بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام پرستت ہے۔ شروتاؤں، آج کے کارکرم کے آرمبھ میں آپ سورہ فصلت کی 30ویں سے لے کر 33ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عباس امام جمعہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياء من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے اور پھر اس پر دڑھتا پوروک جمے رہے، ان پر فرشتے یہ سندیش لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی شوکا کل ہو اور اس سورگ سے پرسن ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم سانسارک جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پرلے میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں اچھا ہوگی، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم مانگ کرو گے۔ یہ اتیانت کشماشیل اور دیاوان ایشور کی اور سے تمہارے آتتھ کا سادھن ہے، اور اس ویکتی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایشور کی اور بلائے، اچھے کرم کرے اور یہ کہے کہ نشچت روپ سے میں اس کے آگیاکاری بندوں میں سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ آج منگلوار ہے، خرداد کی 2، ذی قعدہ کی 3 اور مئی کی 23 تاریخ۔ شوتاؤ، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہی ہیں۔ ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آئے گا۔ پتر ویوہار کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wsirib.ir۔ جبکہ تازہ سماچاروں سے اوگاہ ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi۔ شروع ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ صدا کی بھانتی آپ سب سے پہلے دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینی کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ سنیں گے ساپتاہک کاریکرم قرآنی قصے، اور سبھا کا انتم اور ساپتاہک کاریکرم ہوگا افغانستان سنکٹ کے پریڑام۔ شروتاؤ، یہ تو تھی ہماری آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی کھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ مریم مہدادی اور محمد مہدی سے سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے راشٹرپتی نے کہا کہ تہران اور جکارتا نے ویاپارک لین دین کو اپنی راشٹریہ مدراؤں میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف اپنی بھومی کے پریوگ کی انومتی نہیں دیں گے۔ ایک زائونی سماچار پتر نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ پرتی دن 3,000 سے ادھک میزائل فائر کر سکتا ہے۔ زائونی سماچار پتر یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی پردھان منتری اور سعودی یوراج نے 2 بار ٹیلیفونی وارتا کی ہے۔ اور اب آپ وسطار سے سماچار سنیے۔
ایران کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ تہران اور جکارتا نے ویاپارک لین دین کو اپنی راشٹریہ مدراؤں میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ راشٹرپتی نے اتیاچار پورن پرتیبندھوں اور دباؤ کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی گنتنتر ایران نے اپنے وشیشجھ و پرتیبھاشالی جوانوں کی کھمتاؤں و یوگتاؤں کے سہارے وگیان، تکنیک اور ارتھ ویوستھا کے چھیتر میں مہتوپورن پرگتی کی ہے۔ راشٹرپتی نے کہا کہ پرتیبندھ اور چنوتیاں کسی پرکار ایران کو آگے بڑھنے سے نہ روک سکیں۔ اسی پرکار انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا ایک مہتوپورن دیش ہے، اور اسلامی دیشوں کے ساتھ سمبندھ ایران کی ودیش نیتی کی پراتھمکتا میں سے ہے، اور ایران کی ودیش نیتی میں انڈونیشیا کا وشیش استھان ہے۔ ایران اور انڈونیشیا کے بیچ 11 سمجھوتوں پر ہستاکشر بھی ہوئے ہیں۔ جن سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے ہیں ان میں تیل و گیس، سانسکرتک لین دین اور ویزا سماپت کیے جانے جیسے وشے شامل ہیں۔ راشٹرپتی سید محمد ابراہیم رئیسی منگلوار کو جکارتا پہنچے۔ انڈونیشیا کے راشٹرپتی کے آدھیکارک نمنترن پر اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی منگلوار کی صبح انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا پہنچے۔ وہ ایک اچ استریہ ششٹ منڈل کے ساتھ انڈونیشیا گئے ہیں۔ ان کی اس یاترا کا ادیش دیپکشی سمبندھوں کو وستریت کرنا ہے۔ ایران اور انڈونیشیا کے راشٹرادھیکشوں کی یاترائیں 17 سال پہلے ہوئی تھی، جس کے بعد یہ ایران کے راشٹرپتی کی پہلی انڈونیشیا یاترا ہے۔ انڈونیشیا روانہ ہونے سے پہلے ایران کے راشٹرپتی رئیسی نے سوموار کی رات تہران میں ہوائی اڈے پر پترکاروں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری اس یاترا کا ادیش ایران اور انڈونیشیا کے دیوپکچی سمبندھوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ راشٹرپتی رئیسی نے بتایا کہ ان کی اس یاترا کے دوران آرتھک ویاپارک سانسکرتک اور سواستھ سمبندھی کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے جائیں گے۔
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान विरोधी जर्मनी के विदेश मंत्री के बयान की प्रतिक्रिया में कहा है कि जर्मनी सरकार सद्दाम सरकार को रासायनिक हथियारों से लैस करने और हजारों ईरानियों की शहादत और उनके प्रभावित होने की जिम्मेदार है। किस तरह से देश के विदेश मंत्री ईरान में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में बात करते हैं। ناصر غنانی نے اپنے ٹویٹر پیج اکاؤنٹ پر لکھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جرمن ودیش منتری اس بات سے اوگت نہیں ہیں کہ جرمنی کی سرکار نے راسائنک ہتھیاروں و گیسوں سے کس طرح صدام سرکار کو لیس کیا اور اس سمن میں ایرانی لوگ جرمنی کے بارے میں کیا وچار رکھتے ہیں۔ جرمن ودیش منتری نے ایران کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں مانواادھیکار کی جو استھتی ہے وہ ہمیں سویکار نہیں ہے۔ پشچمی دیشوں نے مہینوں بلکہ ورشوں سے ایران ورودھی وبھن نرادھار دعوے کر کے تہران کے خلاف پرتبندھ لگا دیا ہے۔
پاکستان کے ایک کیندری منتری نے آتنکوادی حملے میں ایران کے سیما سرکشا بلوں پر آتنکوادی حملے کی بھرسنا کی اور بل دے کر کہا کہ پاکستان کبھی بھی ایران کے خلاف اپنی دھرتی کے پریوگ کی انومتی نہیں دے گا۔ فیصل کریم کندی نے آج اسلام آباد میں ایک ساکشاتکار میں ساراوان میں ایران کے سیما سرکشا بلوں کی شہادت پر دکھ پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان کے سنیکت دشمن جاگ رہے ہیں اور جب بھی دونوں دیشوں کے مدھیے کوئی سکاراتمک پرگتی ہوتی ہے تو ورودھی طاقتیں ہمارے خلاف سازشیں رچنے لگتی ہیں۔ انہوں نے دونوں دیشوں کے سنیکت سیما پر ایران اور پاکستان کے نیتاؤں کے اپستھتی اور سنیکت بازار کے ادگھاٹن کو دیپکچیہ سمبندھوں کی دشا میں ایک مہتوپورن قدم بتایا اور کہا کہ کھیت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے دشمن سکری ہیں اور ہمارے مدھیے سہیوگ و سہکارتا کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرکار ایران کے سیستان و بلوچستان پرانت کے ساراوان چھیتر میں ایرانی سرکشا بل کے جوانوں پر آتنکوادی حملے کے تیور بھرتسنا کرتی ہے اور ایرانی سرکار و لوگوں سے سہانبھوتی جتاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تہران اور اسلام آباد آتنکواد سے مقابلہ کرنے، ویرودھی اور اسرکشا اتپن کرنے والے تتوں کی پہچان کرنے میں ایک مت ہیں اور یہ آپسی سمجھ سنیکت سیماؤں پر کی جانے والی سہکارتا کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کر رہی ہے۔ اسی پرکار پاکستان سرکار کے کیندری منتری نے کہا کہ ہمیں پورا وشواس ہے کہ اس پرکار کی سازشوں و کارواہیوں سے ہماری پراچین دوستی و سہیوگ کو کوئی آگاہت نہیں پہنچے گا، کیونکہ دونوں دیشوں کی سرکاریں ایک دوسرے کے خلاف ہونے والے ودت و نہت شڑیتوں سے اوگت ہیں۔
ایک زائنی سنچار مادھیم نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ حزب اللہ کے سینیہ ابھیاس کو کم نہ سمجھا جائے کیونکہ وہ یدھ میں ایک دن میں 3000 سے ادھک میزائل فائر کر سکتا ہے۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے انوسار یدیوت آہارنوت کے سینک پترکار یوسا یشو نے حزب اللہ کی سینک طاقت کے بارے میں چیتاونی دی ہے۔ یدیوت آہارنوت نے حزب اللہ کے حالیہ یدھابھیاس کے بارے میں کہا کہ یہ سینیہ ابھیاس کیول پراچارک یدھابھیاس نہیں تھا بلکہ حزب اللہ اتگرہت فلسطین پر حملہ کرنے اور زائنی کالونیوں میں رہنے والوں کو بندھک بنانے والے لڑاکوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اس زائنی سماچار پتر نے لکھا ہے کہ یدھ میں اسرائیل کی واستوک چنتا حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ ایک دن میں 3000 سے ادھک بہت سٹیک میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس سماچار پتر نے لکھا ہے کہ حزب اللہ کے سینیہ ابھیاس میں اسرائیل کے کئی نگروں پر حملہ کرنے اور بندھک بنانے کا ابھیاس کیا گیا۔ اسی طرح اس زائنی سماچار پتر نے لکھا ہے کہ حزب اللہ کے اس یدھ ابھیاس کو مذاق نہ سمجھا جائے اور اس کی تھل شکتی میں دھیان یوگی وردھی ہو گئی ہے، وشیش کر اس کے لڑاکوں نے سیریا میں انوبھو حاصل کر لیا ہے۔ ज्ञात रहे कि हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान की 23वीं आज़ादी की वर्षगांठ के उपलक्ष में 21 मई को एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया था जिसका उद्देश्य अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हिजबुल्ला की शक्ति प्रदर्शन और अपनी तत्परता का ऐलान करना था। इस युद्धाभ्यास के एक भाग में इसराइल के सैनिकों को बंधक बनाने और ज़ायोन नगरों व कस्बों पर हमले का अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन विमानों, मिसाइलों और दूसरे सैन्य संसाधनों व हथियारों का परीक्षण किया गया।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। ज़ायोन शासन के युद्ध मंत्री ने इस शासन के मंत्रिमंडल को जल्द से जल्द गिराने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बेनी गांस का कहना है कि नेतन्याहू के वर्तमान मंत्रिमंडल को गिराकर इसके स्थान पर एक नया मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे पहले हमें ज़ायोन शासन की रक्षा करनी है। ऐसे में हमें ज़ायोनियों को मतभेदों से बचते हुए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं से बचना होगा।
ज़ायोनी समाचार पत्र यरूशलम पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया हफ्तों में दो बार टेलीफोनी वार्ता की है। ज़ायोनी समाचार पत्र के अनुसार इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान ने संबंधों को सामान्य बनाने के बारे में वार्ता की। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी संचार माध्यमों ने यह रिपोर्ट दी है कि इसराइल से संबंधों को सामान्य बनाने हेतु वाशिंगटन की मांग को बिन सलमान ने रद्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में ज़ायोन समाचार पत्र ने दावा किया है कि बिन्यामिन और मोहम्मद बिन सलमान ने एक दूसरे से टेलीफोनी वार्ता की है। ज़ायोन समाचार पत्र के दावे के अनुसार बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़ियानी ने यह टेलीफोनी वार्ता कराने में अपनी भूमिका अदा की। ज़ायोनी समाचार पत्र यरूशलम पोस्ट के दावे के अनुसार बिन्यामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार अरब संघ की बैठक से पहले और एक बार इस बैठक के बाद टेलीफोनी वार्ता की।
हमास का मानना है कि ईरान फिलिस्तीनियों के लिए बहुत ही विश्वसनीय ढाल है। अल मयादीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार हमास ने ईरान को प्रतिरोध की धुरी के लिए ये स्थिर और अविश्वसनीय स्तंभ बताया है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के नेता का कहना है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ऐसा स्थिर एवं विश्वसनीय स्तंभ है जिस पर फिलिस्तीन का प्रतिरोध तकिया किए हुए है। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हनिया ने कहा है कि IRGC की कुद्स ब्रिगेड के प्रमुख का संदेश फिलिस्तीन के बारे में जहाँ पर ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के विशेष ध्यान को दर्शाता है, वहीं पर फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध के प्रति ईरान के सीमित समर्थन को भी बताता है।
सीरिया में अमेरिका के नियंत्रण वाली जेल से दाइश के तीन खतरनाक आतंकी भाग निकले। सामाचारिक सूत्रों का कहना है कि सीरिया में अमेरिकी सैन्य छावनी के निकट उसके सैनिकों के नियंत्रण वाली जेल से दाइश के ये आतंकी निकल भागने में सफल रहे। ये जेल पूर्वी सीरिया के देरुजुर नामक क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर तेल के कुएं पाए जाते हैं। दाइश के तीन खतरनाक आतंकवादियों के संदिग्ध रूप में जेल से फरार होने की घटना का स्थानीय मीडिया में बहुत शोर हो रहा है। इस शोर शराबे को दबाने के लिए अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच के लिए वे एक टीम का गठन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी स्थानीय संचार माध्यमों में ये बात आती रही है कि कई अवसरों पर अमरीकी सैनिकों ने अपने नियंत्रण वाली जेल में बंद आतंकवादियों के फरार होने में सहायता की है। बताया जाता है कि दाइश के इन आतंकवादियों को बाद में सैन्य प्रशिक्षण देकर सीरिया की सरकार के विरुद्ध आतंकी हमलों के लिए प्रयोग किया जाता है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि के सलाहकार का कहना है कि सूडान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण ही वहां पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सूडान में इस समय जो हो रहा है वो इस देश में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि पश्चिमी देशों ने सूडान संकट के समाधान के लिए सूडान की जनता की मांगों पर आधारित राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के स्थान पर इस देश के लिए थोपी गई नीति को प्राथमिकता दी है। उनका कहना था कि पश्चिम की थोपी जाने वाली ये नीति न तो सूडान की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप है और न ही वहाँ की जनता के अधिकांश लोगों की ये पसंद है।
दक्षिणी अमरीकी देश गुयाना में एक स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से कम 20 छात्राओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गईं। दक्षिण अमरीकी महाद्वीप में स्थित देश गुयाना की सरकार ने एक बयान में बताया है कि माहडिया शहर के माध्यमिक स्कूल के हॉस्टल में आग लग गई। यह शहर राजधानी जॉर्जटाउन से करीब 320 किलोमीटर दूर है। बयान में कहा गया है कि कई छात्राओं को इलाज के लिए हवाई मार्ग से राजधानी लाया गया है। सुरक्षा सलाहकार गेराल्ड गोविया ने बताया कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात में स्कूल के हॉस्टल में आग लग गई। स्कूल में 12 से 18 साल के बच्चे पढ़ते हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। हिजबुल्लाह के सैन्य अभ्यास का जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने रविवार को दक्षिणी लेबनान की आजादी की 23वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर लेबनान की धरती की रक्षा के लिए प्रतिरोध की तैयारी का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। 25 मई 2000 को ज़ायनी शासन को लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के प्रतिरोध से मुंह की खाने के बाद लज्जाजनक पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इसराइली सेनाएं दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने पर मजबूर हुई। इसीलिए इस दिन को लेबनान में प्रतिरोध की ईद के रूप में मनाया जाता है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने दक्षिणी लेबनान में और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की सीमा पर अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमताओं का एक छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित किया। इस अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास के कवरेज के लिए सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन ने इस सैन्य अभ्यास का शीर्षक रखा था, हम कर गुजरेंगे और हम कर गुजर रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास से इस्लामी प्रतिरोध ने अतिगणकारी ज़ायनी शासन को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। इस अभ्यास को 650 से अधिक पत्रकारों, मीडिया हस्तियों और लेबनानी और विदेशी फोटोग्राफरों ने कवरेज दिया, जो उनके लिए बहुत ही रोमांचक दिन था। मीडिया कर्मियों ने हिजबुल्लाह की मीडिया इकाई के निमंत्रण पर इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया, जिसमें किसी भी टकराव की स्थिति में पूरी तैयारी का प्रदर्शन पेश किया गया। इस सैन्य अभ्यास में, जिसे कई लोग ज़ायनी शासन के लिए एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं, अपनी क्षमताओं का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया। इस सैन्य अभ्यास के दौरान हल्के वाहनों पर लगे एंटी टैंक मिसाइल, विभिन्न रेंज और आकार के रॉकेट लॉन्चर्स, बख्तरबंद वाहन जैसे कई प्रकार के हथियारों और ड्रोन विमानों का प्रदर्शन किया गया। मीडिया ने इस बारे में कहा कि इस युद्ध अभ्यास में जिन हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया गया वो पॉइंट लॉन्चिंग मिसाइल हैं, और सबसे मुख्य और अहम समस्या यही है कि पॉइंट लॉन्चिंग मिसाइल का अनावरण न किए जाने का मकसद सुरक्षा और सैन्य तकनीकों की नजरों से बचना है। इस अभ्यास में अवैध अधिकृत उत्तरी फिलिस्तीन में घुसने और जलील क्षेत्र पर नियंत्रण की भी प्रैक्टिस की गई, जो ज़ायोनियों का सबसे बड़ा दुःस्वप्न है। इस सैन्य अभ्यास में हिजबुल्लाह की स्पेशल यूनिट रिजवान के लड़ाके इसराइली हलकों के ध्यान का केंद्र रहे, जो विशेष वर्दी पहने, बख्तरबंद गाड़ियों पर अपने चेहरों पर मास्क पहने बैठे नजर आए। रिजवान ब्रिगेड के सैनिकों की तैयारी देखकर ज़ायोनी हलके बुरी तरह से बौखला गए और इसराइल की ओर से अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
WHO ने रोहिंग्या पीड़ितों की सहायता कम कर दी है, जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोहिंग्या शरणार्थियों को दी जाने वाली सहायता को कम कर दिया है। WHO की ओर से सोमवार को घोषणा की गई है कि बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को इस संगठन की ओर से दी जाने वाली सहायता में कमी की जा रही है। इस वैश्विक संगठन का कहना है कि आर्थिक कमियों के चलते पिछले 3 महीनों के दौरान दूसरी बार रोहिंग्या पलायनकर्ताओं के लिए भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा को कम किया जा रहा है। ये काम लगभग 10 लाख रोहिंग्या पलायनकर्ताओं के साथ किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जून के आरंभ से इन शरणार्थियों के लिए विशेष किए गए $10 प्रति माह को घटाकर अब $8 प्रति माह किया जा रहा है। WHO के इस बयान पर फिलहाल बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले मार्च के महीने में जब रोहिंग्या शरणार्थियों को दी जाने वाली सहायता में कटौती की गई थी तो उसने इन पलायनकर्ताओं के दैनिक जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दी जाने वाली सहायता से पहले ही शरणार्थी शिविरों में रहने वालों को कुपोषण की गंभीर समस्या का सामना रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों की सहायता करने वाले कुछ संगठनों का ये कहना है कि म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में शरण लेने वाले लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के कैंपों में बहुत ही दयनीय हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। WHO की ओर से रोहिंग्या शरणार्थियों को दी जाने वाली सहायता में कमी को एक रोहिंग्या नेता ने बहुत ही शर्मनाक बताया है। खीन माउंग का कहना है कि ये बहुत ही बुरी और घटिया बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहां पर रोहिंग्या पलायनकर्ताओं को दी जाने वाली सहायता को कम करने की घोषणा की है, वहीं पर बांग्लादेश की सरकार से ये मांग की है कि वो रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार के निकटवर्ती क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दे। रोहिंग्या मुसलमान मूल रूप से म्यांमार के राखीन प्रांत के रहने वाले नागरिक हैं। वे अपनी ही मातृभूमि में दशकों से नागरिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में लंबे समय से भेदभाव और हिंसा का सामना रहा है। 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की सेना और वहां के अतिवादी बौद्धों की हिंसा से बचकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में आ गए थे। वर्तमान समय में वे दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में शिविरों में बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन गुजार रहे हैं।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत में 2000 नोटों के बंद होने का ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारत में 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया आज से आरंभ हो गई है, जो इस साल 30 सितंबर तक जारी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पत्रकारों से बात करते हुए देश की जनता से अपील की कि वे इस फैसले से न घबराएं, क्योंकि 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसके लिए उनके पास काफी समय है।
4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 महीनों September 30th तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए। कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर।
उन्होंने कहा कि 2000 के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने के इस फैसले से यद्यपि आम लोगों में थोड़ी चिंता पाई जाती है, परंतु व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं का भी कहना है कि बड़े नोट को चलन से हटाने का फैसला उचित है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों तक इस बड़े नोट की पहुंच काफी कम है, लेकिन ये निर्णय उन लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है जो काले धन के व्यापारी हैं। 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के इस फैसले से जनता में कोई अफरा तफरी नहीं है। व्यापार सामान्य रूप से चल रहा है और बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। व्यापारियों ने कहा कि वे उपभोक्ताओं से 2000 रुपए के नोट लेंगे और व्यापार में कोई रुकावट नहीं आएगी। ज्ञात रहे कि भारत की वर्तमान सरकार ने 2016 में 1000 और 500 के नोटों को अचानक चलन से बाहर कर दिया था, जिससे देश भर में अफरा तफरी मच गई थी। नोट बदलने के लिए लंबी लंबी लाइनें बैंकों के बाहर दिखाई दे रही थी और लंबी लाइनों में खड़े होकर कई लोग हताहत भी हुए थे और छोटे व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तब सरकार को विपक्ष की भी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से।
कुरानी किस्से।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह साफ़ात की 149 से 160 तक की आयतें कब नाजिल हुई थीं। ईश्वरीय धर्म इस्लाम के आने से पहले के काल को अज्ञानता का काल कहा जाता है। ये वो समय था जब अरब प्रायद्वीप अज्ञानता के घनघोर अंधेरे में डूबा हुआ जीवन व्यतीत करता था। अरब की सामाजिक व्यवस्था का आधार कबीलावाद था। अरबों के निकट कबीला इतना महत्वपूर्ण था कि जब किसी कबीले से विवाद होता था तो वो ये देखते ही नहीं थे कि हक क्या है और ना हक क्या है। बस उनके लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि उन्हें अपने कबीले का पक्ष लेना है और उसका साथ देना है।
अरब कबीलों के मध्य छोटी छोटी बातों को लेकर वर्षों विवाद चलता था और इसके दौरान बहुत से लोग मारे भी जाते थे। अगर ये कहा जाए कि अरब समाज में जंगल का कानून प्रचलित था तो गलत न होगा। उस समय अरब समाज के दक्षिण में हफ्शा अर्थात वर्तमान इथोपिया था और वहाँ के लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे, जबकि उस समय के अरब समाज के पश्चिम में रोम साम्राज्य था और वहाँ के लोग भी ईसाई धर्म के मानने वाले थे। इसी प्रकार उस समय के अरब समाज के उत्तर में ईरान था और यहाँ के मानने वाले अधिकांश लोग जरतुश्ती अर्थात पारसी थे।
खुद अरब समाज के मध्य यहूदी भी रहते थे। अरब समाज के अधिकांश कबीले बुतों की पूजा करते थे और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी कबीले थे जिन्हें पूर्ण रूप से न तो ईसाई कहा जा सकता है और ना ही यहूदी और ना ही जरतुश्ती, बल्कि सब मिश्रित थे। अरब प्रायद्वीप के आसपास ऐसे लोग शासन करते थे जो शक्तिशाली होते थे और अरब लोग उन्हीं के समर्थन में रहते थे। इस आधार पर अरब प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से पर ईरानी राजा का शासन था। उसका पश्चिमी भाग रोम साम्राज्य के अधीन था, जबकि उसके पूर्वी भाग पर हफ्शा के राजा का शासन चलता था।
मक्का, मदीना, اور طائف جیسے عرب پرائدویپ کے جو کیندریہ بھاگ تھے ان کا سنچالن وہاں کے قبیلوں کے پرمکھ اور وہاں کے پرتشٹھت لوگ کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہاں کی قبائلی ویوستھا راشائی میں بدل جاتی تھی۔ عربوں میں لڑائی، یدھ اور بلاتکار جیسی باتیں سامانیہ تھیں۔ اگنت کے کال کا ایک شاعر کہتا ہے، ہمارا کام لوٹ پاٹ ہے، پڑوسیوں پر حملہ ہے، اور جب کوئی نہیں ملتا تھا تو اپنے بھائی کو ہی لوٹ لیتے ہیں۔
دوستو، عربوں میں ایک اچھی پرچلت بات یہ تھی کہ عرب مہمان نواز ہوا کرتے تھے، یعنی مہمانوں کی سیوا اور آؤ بھگت بہت کرتے تھے۔ ساتھ ہی عرب مردوں سے اسے پرتشٹھا کی نظر سے دیکھتے تھے جو ادھک گھمنڈی ہوتا تھا اور لوگوں کا خون بہانے میں اگرنی ہوتا تھا اور اتیاچاری اور اتیاچاریوں کا انسرن کرتا ہوتا تھا۔ شراب پینا اور جوا کھیلنا بھی عام بات تھی۔ البتہ عرب سماج کی مہیلائیں اپنے بہت سے مانویہ ادھیکاروں سے ونچت تھیں۔
عرب سماج میں مہیلاؤں کو کسی چیز کا مالک بننے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا، اسی پرکار اپنی اچھا سے بھی کام نہیں کر سکتی تھیں۔ بہت سے یہودیوں کی بھاتی عرب سماج کا ایک مرد کئی پتنیاں رکھ سکتا تھا۔ عرب اپنی مہیلاؤں کو سجاتے سنوارتے تھے اور جسے پسند کرتے تھے اسے اپنے پاس بلاتے تھے۔ انیتک کاریہ ان کے مدھیہ پرچلت تھا۔ عرب سماج میں جتنے بھی انیتک کاریہ پرچلت تھے ان سب کے لیے سب سے اچھا وہی شبد ہے جسے مہانیشور نے پوتر قرآن میں استعمال کیا ہے، یعنی اجانی۔
عرب سماج میں مہان و سرو سمرتھ ایشور کے بارے میں عجیب و غریب بھاونائیں اور دھارنائیں پائی جاتی تھیں۔ کتنی وچتر بات ہے کہ کافر اور انیکیشور وادی مہانیشور کی تلنا سوئم سے کرتے اور کہتے تھے کہ اس کے پاس بھی پتنی اور سنتان ہے۔ خزا اور سلیم نام کے دو عرب قبیلے تھے جن کا ماننا تھا کہ فرشتے ایشور کی بیٹیاں ہیں، جبکہ دوسرے عرب قبیلوں کا ماننا تھا کہ جنات ایشور کے بیٹے ہیں۔ یہی نہیں، کچھ عربوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایشور کی پتنی جناتوں میں سے ہے۔
دوستو، کچھ عربوں کا ماننا تھا کہ ایشور جنوں کا شریک و سہبھاگی ہے، اور عرب کے اگیاری لوگ ایشور کے ساتھ ساتھ جنوں کی بھی اپاسنا کرتے تھے۔ سارانش کی وہ اگیانتا کے گھنگور اندھیرے میں تھے اور انہیں یہ احساس تک نہیں تھا کہ وہ کس گمراہی کے شکار ہیں۔ بہت سے عرب اتنا گمراہ تھے کہ وہ مہان سرو سمرتھ اور نراکار ایشور کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مہانیشور سرو ویاپی ہے۔
اگیانی عرب اس بات کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سب کا ایشور ایک ہے، اسی نے سارے برہمانڈ کی رچنا کی ہے۔ ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور ایسا کوئی پرانی ہی نہیں ہے جسے وہ نہ دیکھتا ہو۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر چیز سے ودت اور نہت روپ سے اوگت ہے۔ دوسرے شبدوں میں ودت اور نہت ہمارے لیے ہے، نہ کہ اس کے لیے۔ اس کے لیے ودت اور نہت سمان ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز نہت نہیں ہے۔
حد یہ تھی کہ کچھ عرب سوئم کو ایشور سے بھی بہتر و شریشٹھ سمجھتے تھے۔ ادھارن کے طور پر وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے مقابلے میں لڑکوں کو پسند کرتے تھے، کیونکہ جنگ اور دوسروں کا مال لوٹنے میں لڑکے ان کی مدد کرتے تھے اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں لڑکیوں سے انہیں فائدہ نہیں تھا۔ یہی نہیں، جب کبھی دشمن ان کی لڑکیوں کو بندی بنا لیتے تھے تو انہیں بڑی ذلت و اپمان کا احساس ہوتا تھا۔ کچھ عرب ایسے بھی تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اس پر وہ گرو بھی کرتے تھے، اور جب انہیں لڑکی پیدا ہونے کی سوچنا دی جاتی تھی تو ان کے چہرے اتر و کالے پڑ جاتے تھے۔ اس بات کا الیکھ پوتر قرآن میں کیا گیا ہے۔
दोस्तों, अलबत्ता मानवता की दृष्टि से महिला और पुरुष महान ईश्वर की नज़र में समान हैं और दोनों आध्यात्मिक शिखर को तय कर सकते हैं, और मर्द और औरत में से जिसका तक्वा अधिक होगा महान ईश्वर की नज़र में उसका स्थान अधिक होगा। बहरहाल, अरब के अज्ञानी लड़कों को लड़कियों से श्रेष्ठ समझते थे और उनका मानना था कि ईश्वर के लिए लड़कियां हैं और हमारे लिए लड़के हैं। इस बात का उल्लेख महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह साफात की 149वीं आयत में करता है और कहता है कि हे पैगंबर, उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे पालनहार के लिए लड़कियां हैं और उनके लिए लड़के हैं।
कितनी अजीब बात है कि अरब जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करते थे उसे महान ईश्वर के लिए पसंद करते थे। ये एक प्रकार से महान ईश्वर का अपमान है, क्योंकि इस प्रकार के पसंद का अर्थ स्वयं को महान से श्रेष्ठ समझना है। महान ईश्वर आगे कहता है कि क्या हमने फरिश्तों को लड़की पैदा किया है, और ये उस वक्त देख रहे थे।
रोचक बात यह है कि किसी भी चीज़ का स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग होना उस वक्त तक कोई साबित नहीं कर सकता जब वो दिखाई न दे और उसका आभास न किया जाए। जबकि आज तक फरिश्तों को किसी भी आम इंसान ने नहीं देखा, तो अरब के काफिरों और अनेक ईश्वरवादियों को ये कैसे पता चल गया कि फरिश्ते लड़कियां हैं? इस प्रकार की बात का आधार केवल आधारहीन कल्पना और बेबुनियाद सोच है।
महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह साफात की आयत नंबर 151 और 152 में कहता है, जान लो कि ये मात्र कल्पना के आधार पर कहते हैं कि ईश्वर की संतान हैं, और निसंदेह ये झूठ बोलते हैं। अरब के काफिरों और अनेक ईश्वरवादियों ने सफेद झूठ बोला है, क्योंकि महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने न किसी को पैदा किया है और न किसी ने उसको पैदा किया है। वो एक अकेला था और अकेला है, उसका कोई भी शरीक व समतुल्य नहीं है और कोई भी उस जैसा नहीं है। महान ईश्वर सूरह साफात की आयत नंबर 153 से 156 तक की आयतों में कहता है कि क्या ईश्वर ने लड़कियों को लड़कों पर प्राथमिकता दी है जो उन्हें पैदा किया है, तो तुम कैसी बात करते हो? क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? क्या इस संबंध में तुम्हारे पास कोई खुला हुआ प्रमाण है?
काफिरों और अनेकेश्वरवादियों की बात इतनी निराधार है कि थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला इंसान अगर सोचे तो उनके दावे के गलत होने को समझ जाएगा। इसी प्रकार महानिश्वर सूरह साफात की आयत नंबर 157 में कहता है, अगर सच्चे हो तो अपनी किताब व दलील लाओ। इसी प्रकार महानिश्वर अनेकेश्वरवादियों के झूठ की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उन्होंने ईश्वर और जिन्नों के बीच संबंध व रिश्ते को करार दिया, जबकि जिन्नात जानते हैं कि हिसाब किताब के लिए उन्हें हाजिर किया जाएगा।
महानिश्वर पवित्र कुरान की आयत नंबर 159 और 160 में कहता है, अल्लाह उस चीज से बहुत पाक है जिसकी नस्बत या काफिर उसकी ओर देते हैं, मगर जो अल्लाह के निष्ठावान बनते हैं। कितने खुशनसीब वे लोग हैं जिन्हें महान ईश्वर ने अपना निष्ठावान बंदा कहा है। निष्ठावान बंदे महान ईश्वर के अलावा हर चीज़ को छोटा समझते हैं। उनकी नज़र में केवल ईश्वर महान होता है। वे महान ईश्वर के प्रेम, उसके गुणगान और उसके आदेशों के पालन को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं।
निष्ठावान बंदे महान ईश्वर की याद को अपने दिलों में दवा की तरह समझते हैं। महान ईश्वर की याद से उनके दिलों को सुकून पहुंचता है। महान ईश्वर की याद से उन्हें जो सुकून पहुंचता है और जो उन्हें मिठास मिलती है, उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। जो इंसान अपने पालनहार की याद की मिठास चख चुका है, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी नहीं घबराता, क्योंकि वो हमेशा अपने पालनहार के अपने से बहुत करीब और समीप पाता है। निष्ठावान बंदा इस बात को जानता है कि उसका पालनहार उस बात से भी पूर्ण रूप से अवगत है जो अभी उसके दिल में आई भी नहीं है, और कोई भी कार्य नहीं है जो उसकी असीम क्षमता व शक्ति से बाहर है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। Thank you.
یہ تہران ہے اسلامی گنتانتر ایران کی آواز۔ شروع اب پرستت ہے ہماری سبھا کا انتم کاریکرم افغانستان سنکٹ کے پریڑام۔
افغانستان سنکٹ کے پریڑام۔
دوستو، کارکرم افغانستان سنکٹ کے پریڑام کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ مریم مہردادی اور احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، آج ہم پاکستان پر افغانستان سنکٹ کے پڑنے والے پربھاؤ کے بارے میں چرچا کریں گے۔ پچھلے چار دشکوں کے دوران پاکستان امریکہ اور نیٹو کا نکٹتم گھٹک رہا۔ ویسے بھی وشو کے راجنیتک پٹل پر پاکستان کو امریکہ کے سہیوگی اور گھٹک دیش کے روپ میں دیکھا جاتا رہا ہے۔ دسمبر سن 1979 کو جب سوویت سنگھ نے افغانستان میں سینک ہستکشیپ کیا تھا، اس سمے سے لے کر فروری 1989 تک افغانستان کے گھٹنا کرم میں پاکستان نے امریکہ کے لیے مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔ افغانستان میں گھٹنے والی گھٹناؤں کو پربھاوت کرنے میں پاکستان کی بھومیکا اس لیے بھی رہی کیونکہ پاکستان کے سیماورتی کھیتر میں پشتو جاتی کے لوگ رہتے ہیں، جن کے نکٹ سمبندھ افغانستان میں رہنے والے پشتو قبیلوں سے یا پشتون قبیلوں سے رہے ہیں۔
اس سمے جو طالبان افغانستان کی ستہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، ان میں سے ادھکانش کا سمبندھ پشتو جاتی سے ہی ہے۔ اس کے اترکت پاکستان میں سنی مسلمان بہومت میں ہیں، اور یہی حال اس کے پڑوسی دیش افغانستان کا بھی ہے۔ جب امریکہ میں 11 ستمبر کی گھٹنا گھٹی اور اس کے بعد آتنکواد ورودی گٹھ بندھن دوارا پاکستان کے ورودھ سمبھاوت کارروائی کی سگبو گاہٹ سنائی دی، تو اسلام آباد نے امریکہ کے نیتتو والے آتنکوادی ورودی گٹھ بندھن کے ساتھ سہیوگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حساب سے واشنگٹن کے ساتھ سمبندھوں میں پاکستان اب ایسی استھتی میں آ گیا تھا جس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو تھے۔
اسلام آباد میں کچھ حلقوں کا یہ ماننا تھا کہ طالبان کے بارے میں پاکستان یدی اپنے درشٹی کوڑ میں پنر وچار نہیں کرتا تو اس کو نشچت روپ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ امریکی راجنیتاؤں کے لیے یہ بات پوری طرح صاف تھی کہ افغانستان میں آتنکوادیوں کے ورودھ کارواہی میں یدی پاکستان نے سہیوگ نہ کیا تو ان کا یہ ابھیان پریڑام ہین ہو سکتا ہے۔ اس سوچ کے پیچھے امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ ان دو پڑوسی دیشوں کے بیچ کچھ ایسی سمانتا ہیں جن کے کارن افغانستان کے ورد سینک کارروائی میں پاکستان اچھا سہیوگی ثابت ہو سکتا ہے۔
اس کا مکھیا کارن یہ تھا کہ پاکستان کے کچھ دھارمک شکشا کیندر آتیوادی وچاردھارا کی پرورش کر رہے تھے، اور بہت سے طالبان وہی کی دین تھے۔ امریکہ کے بریکنگز نامک تھنک ٹینک کے انوسار پاکستان کے قبائلی کھیتر آتنکوادیوں کے لیے ایک پرکار سے سب سے سرکشت کھیتر تھے، جن کو پشچمی میڈیا میں آتنکیوں کا سورگ بتایا جاتا تھا۔ پاکستان میں سکریہ بہت سے آتنکی گٹوں کا سمبندھ طالبان اور القاعدہ سے بہت نکٹ کا تھا۔ اس پرکار سے کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کا طالبان سے نکٹ کا سمبندھ تھا۔ شاید یہی کارن تھا کہ آتنکواد کے ورودھ یدھ میں امریکہ دوارا پاکستان کو شامل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے امریکہ نے اپنے اسٹریٹجی میں پاکستان کو شامل کیا اور اس کو آتنکواد ویرودھی ابھیان میں بھاگیداری دی۔
افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کے نکل جانے کے بعد اب پاکستان طالبان کے مکھ سمرتھک کے روپ میں پرکٹ ہوا۔ دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنیوکت راجیہ امریکہ کے افغانستان سے باہر چلے جانے کے بعد پاکستان وشو سمودائے اور طالبان کے بیچ کوٹ نیتی کو جاری کرنے والے کارک کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک انیہ بات یہ ہے کہ پاکستان کھیتر میں امریکہ کے مہتوپورن گھٹک کے روپ میں تو موجود تھا ہی، ساتھ ہی چین کے ساتھ بھی اس کے اچھے سمبندھ تھے جو امریکہ کا پرتسپردھی ہے۔ नए सिल्क रोड परियोजना को लेकर चीन की सरकार के साथ पाकिस्तान के संबंध मधुर रहे हैं। उसको अब भी अफगानिस्तान के मामलों में एक प्रभावी देश के रूप में देखा जाता है।
कुछ बातें ऐसी हैं जिनके दृष्टिगत अफगानिस्तान के हालिया परिवर्तनों में पाकिस्तान की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जैसे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पाए जाने वाले बहुत पुराने मतभेदों, दोनों प्रतिस्पर्धी देशों का परमाणु संपन्न होना और पाकिस्तान की चीन से नज़दीकी और भारत की उसकी दूरी आदि। इन बातों के दृष्टिगत पाकिस्तान के राजनेताओं के अतिरिक्त वहाँ के सैन्य जिम्मेदार भी प्रयास कर रहे हैं कि तालिबान के साथ अधिक निकट के संबंध बनाते हुए वहां के ताजा परिवर्तनों से अधिक लाभ उठाया जाए।
पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के पुनः सत्ता में पहुंचने का स्वागत करते हुए कहा था कि अफगानों ने गुलामी की रस्सियां तोड़ दी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा तालिबान की सत्ता का स्वागत करने के साथ ही वहां के कई केंद्रीय मंत्रियों, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों तथा इस्लामवादी दलों ने भी इसका खुलकर स्वागत किया और इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने इस काम को इस्लामी जगत के लिए महत्वपूर्ण विजय बताया। पाकिस्तान के राजनेताओं का मानना है कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।
हामिद करजई और अशरफ गनी के सत्ताकालों में अफगानिस्तान में भारत का जो प्रभाव पड़ा था और जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, वो अब कम हो जाएगा, ये पाकिस्तानी राजनेताओं का मानना था। भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी एशिया के मामलों के जानकार पीर मोहम्मद मुल्ला जही का यह मानना है कि सन 2022 में तालिबान की तेजी से प्रगति एक सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी। ये बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि अफगानिस्तान के भीतर तालिबान जिस अनुपात में विस्तृत और मजबूत होंगे, उसी अनुपात में पाकिस्तान के हितों की पूर्ति होगी, जबकि यही प्रक्रिया भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है।
अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से पहले इस देश में भारत की पकड़ बहुत अच्छी थी। उस काल में भारत ने अफगानिस्तान के भीतर कई विकास योजनाओं पर काम किया था, जैसे सड़क निर्माण, बांधों का निर्माण तथा इस देश के मूलभूत ढांचे को मजबूत करना आदि। अब अगर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामने रखते हैं तो ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि तालिबान वाले अफगानिस्तान में भारत अपनी पुरानी पोजीशन को पूरी तरह से बचा नहीं पाएगा। दूसरे शब्दों में अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने के साथ ही भारत की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति लगातार मजबूत होती जाएगी। इससे भारत की उस आकांक्षा को भी चोट पहुंचेगी जिसमें वो अफगानिस्तान के माध्यम से केंद्रीय एशियन देशों में जमीनी मार्ग से अपनी पहुंच बनाना चाहता था।
दोस्तों, यहाँ पर इस बात का उल्लेख बहुत ज़रूरी है कि निश्चित रूप में पाकिस्तान तालिबान का शत प्रतिशत समर्थक है, किंतु वो अफगानिस्तान में किसी भी हाल में इस्लामी शासन व्यवस्था का समर्थन नहीं करता। ड्यूरेंट रेखा के निकटवर्ती लोगों के लिए ये मुद्दा बहुत ही जटिल एवं संवेदनशील हो सकता है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकियों की वापसी के बाद अगर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो जाता है तो ऐसे में उनको नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाएगा। एक हिसाब से वे पाकिस्तान की पकड़ से बाहर हो जाएंगे।
ऐसे में पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून जाति के लोग किसी भी हाल में इस देश का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि वे खुलकर तालिबान के पक्ष में खड़े होंगे। उनके दिमाग में पहले से ही पश्तून जाति के एक देश का सपना पाया जाता है जो ड्यूरेंट रेखा के उस पार रहते हैं। तालिबान के सशक्त होने की स्थिति में ये विषय फिर जोर पकड़ लेगा। एक विचार ये भी पाया जाता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान को पराजय होती है और उत्तरी मोर्चा सत्ता में आता है तो ऐसे में पाकिस्तान के विरुद्ध भावनाएं भड़क भी सकती हैं। अफगानिस्तान की पहले की सरकारें और उत्तरी मोर्चा दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से भारत के समर्थक रहे हैं।
پاکستان کے لیے ایک خطرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں مضبوط ہونے کی استھتی میں طالبان پاکستان میں رہنے والے طالبان لڑاکوں کا کھل کر سمرتھن کر لے لگے، جو کسی بھی استھتی میں پاکستان کے ہت میں نہیں ہوگا۔ حالیہ کچھ مہینوں کے دوران تحریک طالبان نے پاکستان کے بھیتر چین کے ہتوں پر کئی حملے کیے ہیں۔ اسلام آباد کو پتا ہے کہ دونوں اور سے طالبان گٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور افغانستان میں طالبان کے سشکت ہونے کی استھتی میں اسلام آباد کے لیے ان سے چنوتیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتاو، ابھی آپ سن رہے تھے ساپتاہک کارکرم افغانستان سنکٹ کے پریڑام، اور اب سمے مکھیہ سماچاروں کی سارانش کا۔ ایران کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ تہران اور جکارتا نے ویاپارک لین دین کو اپنی راشٹریہ مدراؤں میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف اپنی بھومی کے پریوگ کی کدابی انومتی نہیں دیں گے۔ ایک زانی سماچار پتر نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ پرتی دن 3000 سے ادھک میزائل فائر کر سکتا ہے۔ زانی سماچار پتر یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی پردھان منتری اور سعودی یوراج نے دو بار ٹیلی فونی وارتا کی ہے۔ شروتاؤ، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیا پسند آیا ہوگا۔ کارکرم کے سمبندھ میں اپنے وچاروں، سجھاؤں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیا اوگت کرائے گا۔ چلتے چلتے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ کر لیں، pastoday.ir/hi۔ تو شروتاؤ، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انمت دیں، خدا حافظ۔